मन बदलो चिंतन बदलो,
मन बदलो चिंतन बदलो,
बदलो निज संस्कार, बदलो निज संस्कार, संस्कार जब बदलेंगे तो
बदलेगा संसार, बदलेगा संसार।
ओम शांति। बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाली वारिस क्वालिटी की आत्माओं को यज्ञ में लाने वाली, वाणी पर प्रभुत्वता धारण करने वाली ऐसी बाप दादा की अमूल्य रतन राजयोगिनी उषा दीदी जी हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। एक हाथ की ताली से हम सभी इनका स्वागत करेंगे। आपका इस सभा में बहुत बहुत तह दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी जो क्लास चलेगा स्वपरिवर्तन संस्कार परिवर्तन की फास्ट गति, सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज उसी पर आप सभी को क्लास कराएंगी और ज्ञान रतन से झोली भरेंगी। तो ऐसी बाबा की अमूल्य रतन राजयोगिनी उषा दीदी जी हम सभी को ज्ञान रतन से झोली भरेंगी। उषा दीदी जी।
ओम शांति। आज बाबा ने मुरली के अंदर हम सभी बच्चों को अपने इस शिव जयंती के पावन पर्व पर जन्मदिन की मुबारक बाबा ने हमें दी और हम सभी बच्चे बाबा को देते हैं। तो इसीलिए आज हम भी आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक देते हैं, मुबारक देते हैं। शिव जयंती, बाबा की जयंती, सुहम बच्चों की जयंती, और इसीलिए एक शुभ नशा रहता है, खुशी रहती है जयंती मनाते हुए। आज की बाबा की मुरली के अंदर आरंभ में तो बाबा ने हम बच्चों के महिमा की बधाइयां दी और उसके बाद बाबा ने कहा, बाबा कहना तो नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी बाबा ने बोल दिया। और कौन सी विशेष शिक्षा बाबा ने हम बच्चों को दी कि समय के हिसाब से अभी हम बच्चों को क्या पुरुषार्थ करना है उसके ऊपर हम बच्चों का अटेंशन खींचवाया। सबसे पहले तो व्रत और जागरण की बात बाबा ने की और ये हमें याद दिला दिया, खाली ब्रह्मचर्य व्रत की बात नहीं है लेकिन ब्रह्माचारी बनने की बात है। ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए संपूर्ण पवित्रता का व्रत बाबा ने हम बच्चों को जैसे अपने स्मृति के अंदर रिफ्रेश करने के लिए कहा, क्योंकि ये हमारे अनादि संस्कार है और इसलिए जितने अनादि संस्कारों की स्मृति में हम रहेंगे उतने ही स्वपरिवर्तन तीव्र गति से होगा और साथ ही साथ संस्कार परिवर्तन करना आसान हो जाएगा। जब मैं इस विषय को लेकर के सोच रही थी कि इतना संस्कार परिवर्तन के लिए बाबा हम बच्चों को क्यों जोर दे रहे हैं, उसके पीछे एक रहस्य है और ये रहस्य ये है कि जब यज्ञ की शुरुआत हुई उसी समय से अगर हम देखें कि यज्ञ की शुरुआत में हिस्ट्री तो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा में सभी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था और श्री कृष्ण के साक्षात्कार में भी बाल स्वरूप दिखाई देता था कि जैसे मिचनू कृष्ण घुटना करते हुए जैसे आ रहा है और इस तरह का साक्षात्कार सभी दादियों ने लगभग किया है। कोई भी ऐसे नहीं है जिन्होंने वो साक्षात्कार नहीं किया हो। और ये साक्षात्कार भी क्यों हुआ, बाबा को सभी दादियों को बाबा के अंदर, क्योंकि बाबा उस स्मृति के अंदर परफेक्टली स्थित हो गए थे। मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसके अंदर जब लोगों को पुनर्जन्म में ले जाते हैं पूर्व जन्म में, तो उस आर्टिकल में लिखा कि मान लो कि कोई पूर्व जन्म में ले जाता है किसी को और उसको बता दिया जाए कि पिछले जन्म में तुम महाराणा प्रताप थे या शिवाजी महाराज थे या ऐसी कोई हस्ती का नाम दे देवे जो एकदम स्ट्रांग हो या जिसके अंदर वो संस्कार हो देशभक्ति के या कोई भक्त के, किसी बहन को बता दिया जाए कि तुम पिछले जन्म में मीराबाई थी, तो कैसा लगेगा कि वो स्मृति आने से ही वो विश्वास नहीं कर पाते हैं और उनके अंदर वो संस्कार अपने आप जागृत होने लगते हैं कि सचमुच में ऐसा था, मेरा पुनर्जन्म ऐसा था, पूर्व जन्म ही मेरा इस तरह का था। और शायद वो हरकतें या वो संस्कार इमर्ज करना बहुत स्वाभाविक हो जाएगा उसके लिए। ठीक इसी तरह ब्रह्मा बाबा को भी सबसे पहले शिव बाबा ने यही कहा कि तुम ही वो नारायण था जिसकी तुम भक्ति कर रहा है, तुम वही था और वो तेरा ही स्वरूप है। विष्णु चतुर्भुज तुम्हारा ही स्वरूप है। और सचमुच जैसे ये महसूस किया तो विष्णु का या नारायण का बचपन का स्वरूप श्री कृष्ण का, तो वो कृष्ण स्वरूप में आ गए। यानी दूसरे शब्द में कहे तो मन के अंदर श्री कृष्ण का जन्म हो गया, उनकी मानसिकता के अंदर श्री कृष्ण का जन्म होने से ही वो संस्कार इमर्ज होने लगे। संपूर्ण पवित्रता बाबा ने अपने संस्कारों में ढालना आरंभ कर दिया क्योंकि वो स्मृति ऐसी परफेक्ट इमर्ज हो गई कि अच्छा ये मेरा ही स्वरूप है। तो श्री कृष्ण का जन्म हुआ उनके मानसिकता में या आध्यात्मिक स्तर पर। और जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो लोगों को भी श्री कृष्ण का बचपन ही साक्षात्कार में दिखाई दिया क्योंकि बाबा ने अपनी मानसिकता में उसको उस रूप से इमर्ज किया। यानी जन्म हुआ, श्री कृष्ण का जन्म हुआ मेंटल स्टेज पर या आध्यात्मिक स्तर पर। और इसीलिए जिसको भी बाबा खड़ा हो जाता था बाबा जिसके सामने और जो भी आत्माएं देखते थे तो बाबा में श्री कृष्ण को लेकिन यूथ स्वरूप में नहीं देखा, बचपन का स्वरूप ही दिखाई दिया घुटना करता हुआ। मुझे याद आता है बड़ी दादी जी जब कहती थी, अपना अनुभव सुनाती थी, तो हमेशा ये अनुभव दादी प्रकाशमणि जी सुनाती थी कि बाबा के सामने आते ही दादी को सबसे पहले बाबा में वो मिचनू कृष्ण ही दिखाई दिया और मिचनू कृष्ण जैसे दादी जी को बुला रहा था। ऐसे सभी दादियों को ये साक्षात्कार हुआ क्योंकि श्री कृष्ण के संस्कारों का जन्म हो गया था। यानी 1936 से लेकर 1950 तक वो बचपन की लीलाएं यज्ञ के अंदर भी चली, जिसको आज भी दादियां भागवत के रूप में वर्णन करती हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने संस्कारों को कैसे क्रिएट किया या बनाया? उस स्मृति स्वरूप होने से। इसीलिए बाबा हम बच्चों को भी कहते हैं कि तुम सभी भी कौन हो? देवी देवताएं ही हो। जब हम भी वही देवी देवताएं ही है, श्री कृष्ण जैसे ही है, तो हम वो स्मृति स्वरूप बन जाए तो हमारे अंदर भी एक छोटा दिव्य स्वरूप का जन्म होगा, हमारी मानसिक स्थिति में या आध्यात्मिक स्थिति में, और उसी से संस्कारों का परिवर्तन करना आसान हो जाएगा। वो बचपन की लीलाएं जैसे भागवत के रूप में दिखाते हैं हर एक के साथ श्री कृष्ण, तो ऐसे हर एक दादियों ने महसूस किया कि हमारे साथ श्री कृष्ण है, और उसी के साथ संस्कार मिलन की रास करने लगे। हमारा ही यादगार है, संस्कार मिलन की रास किया उन्होंने। हम भी वो संस्कार मिलन की रास किसके साथ? श्री कृष्ण के साथ करना आरंभ कर दे तो संस्कार परिवर्तन सहज हो जाएगा। बात बहुत गुह्य है, उसको आप विजुअलाइज करते हुए जाना। 1950 तक वो पाठ चला, लेकिन जैसे ही भारत में आए तो श्री कृष्ण युवा अवस्था को प्राप्त कर चुका था, है ना? कितने साल हो गए थे? 14 साल। तो यूथ स्टेज में आ गया, तो ब्रह्मा बाबा भी भले 70 साल की आयु थी शरीर की, लेकिन बाबा के अंदर भी यूथ स्टेज श्री कृष्ण का जैसे प्रैक्टिकल स्वरूप ले लिया था। और यूथ स्टेज में श्री कृष्ण ने क्या किया? इसीलिए देखो, भक्ति में श्री कृष्ण को गीता का भगवान क्यों कहा गया, उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि शिव बाबा गुप्त था और इन्होंने अपना संस्कार इमर्ज कर लिया, और इसलिए यहां आने के बाद फिर जैसे ही युवा अवस्था हो गई तो बाबा भले शारीरिक रीति से उम्र काफी बड़ी थी, लेकिन फिर भी एकदम सीधा चलते थे, कोई सहारा नहीं लेते थे, योग में बैठते थे तो भी आज जवानों को भी शर्मिंदा कर दे ऐसी बाबा की योग की बैठक थी घंटों घंटों, क्योंकि बाबा अपने आप को श्री कृष्ण के यूथ स्वरूप में महसूस करते थे। और इसलिए 93 इयर्स तक भी बाबा ने कोई सहारा नहीं लिया, क्योंकि उस समय श्री कृष्ण जैसे 33 साल का हो गया था, वो स्वरूप इमर्ज हो गया 33 साल का। और युवा स्टेज में क्या किया श्री कृष्ण ने? गीता ज्ञान देना आरंभ किया अर्जुन को, कि युद्ध के मैदान से के अंदर युद्ध से पूर्व गीता ज्ञान 18 अध्याय देना शुरू किया। तो 1950 से लेकर के 2015 तक मैं कहूंगी गीता ज्ञान के 18 अध्याय चले। 2015 तक गीता ज्ञान के 18 अध्याय, युद्ध आरंभ नहीं हुआ है, युद्ध से पूर्व। और आज जैसे बाबा ने मुरली में सुनाया कि कई लोग पूछते हैं कितना साल है, कितना साल है युद्ध का, बाबा ने कहा उस युद्ध का इंतजार नहीं करो। लेकिन 2015 से जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ तो गीता ज्ञान समाप्त हुआ, और गीता ज्ञान समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण सारथी बन गया, भगवान सारथी बन गया, बस साक्षी होकर के युद्ध को देखना आरंभ किया और कहा तुम्हें ही युद्ध करना है। 2015 से हर एक के जीवन में युद्ध आरंभ हो गया है, हर एक के जीवन में युद्ध आरंभ हो गया। इसलिए 2015 से पहले की सीजन में 2 साल लगातार बाबा ने एक ही शब्द को लेकर के मुरलियां पूरी चलाई। कौन सा शब्द लेकर के, कौन सा शब्द लेकर के बाबा ने एक ही शब्द को लेकर के मुरलियां चलाई विभिन्न तरीके से, और वो था एवर रेडी हो, माना अब रेडी हो युद्ध के लिए, युद्ध के लिए रेडी हो अभी, क्योंकि गीता ज्ञान समाप्त तो हो रहा है। और हम सभी बच्चों ने जब भी बाबा ने पूछा एवर रेडी हो, हर एक ने हाथ खड़ा कर दिया, यस रेडी है हम, हर एक ने हाथ खड़ा किया है। बाबा कई बार कहते थे कि टीवी वाले कैमरा घुमाओ, सबने हाथ किया है रेडी, हम एवर रेडी है। लेकिन उस समय शायद हमने उस मतलब को समझा नहीं था, और जब बाबा ने कह दिया, जैसे अर्जुन ने कहा अब मैं स्मृति स्वरूप हो गया, नष्ट मोहा हो गया, अब मैंने ज्ञान को अच्छी तरह से समझ लिया है, अब मैं एवर रेडी हूं, यानी युद्ध के लिए तैयार हूं। इसीलिए बाबा ने पूछा एवर रेडी हो, और हर एक ने हाथ खड़ा कर दिया एवर रेडी है, तो गीता ज्ञान समाप्त तो हो जाएगा। और इसलिए गीता ज्ञान समाप्त हुआ, जो गहराई की अव्यक्त मुरलियां चलती थी, वो गहराई वाली अव्यक्त मुरलियां, गीता ज्ञान ठोस जिसको कहा जाए, वो समाप्त हो गया। अव्यक्त बाप दादा ने इतनी गहराई वाली मुरलियां चलाई है, साकार में भी बाबा ने इतनी गहराई वाली मुरलियां चलाई, यानी ठोस ज्ञान दिया हम बच्चों को। लेकिन 2014 में लगातार बाबा ने पूरी सीजन में हर टर्न में एक ड्रिल कराई, एवर रेडी जो है तो ड्रिल करो, कौन सी, के एक सेकंड में अशरीरी साइलेंस हो जाओ। अब 2014 के बाद जो फेज चालू हुआ वो है युद्ध का। दुनिया का युद्ध तो बाद में होने वाला है, उसका इंतजार नहीं करो, लेकिन अब अगर तैयार हो गए, रेडी है आप, तो युद्ध आरंभ हो गया। हर एक के जीवन में कौन सा युद्ध चल रहा है, किसी के जीवन में संस्कारों के साथ युद्ध कर रहे हैं, कोई अपने स्वभाव के साथ युद्ध कर रहा है, कोई परिस्थितियों के साथ युद्ध कर रहा है, कोई हालातों के साथ युद्ध कर रहा है, कोई समस्याओं के साथ युद्ध कर रहा है। हर एक ब्राह्मण ये कहता है हर एक युद्ध कर रहा है, और युद्ध करने में ही क्या चाहिए, अगर युद्ध में विजयी होना है, क्योंकि वो युद्ध जो कर रहे हैं उस युद्ध से पता चलेगा, उस युद्ध से पता चलेगा कि हम सचमुच में पांडव है या कौरव है। कौरव माना जिसने अहंकार को जीता नहीं है। दुर्योधन ने क्या कहा था, धर्म क्या है मैं जानता हूं, और धर्म किसको कहा जाता है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने की अभी तक मुझ में शक्ति नहीं है, अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता हूं। अधर्म यानी पुराने संस्कारों को छोड़ नहीं सकता और नए संस्कार को धारण नहीं कर सकता। तो वो कौन हो गए, जो नए संस्कार के स्मृति स्वरूप नहीं बन पाए और पुराने संस्कार के वश रहे, तो वो किस सेना में है, किस सेना में है, अपने आप से पूछो कि मैं किस सेना में। अक्षौणी की सेना तो है, लेकिन वो अक्षौणी की सेना पांडव वाले के तरफ हूं या कौरव वाले के तरफ हूं। भीष्म पिता यानी जिसने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली पवित्रता की, लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा लेने के बाद भी किस तरफ थे, कौरव के तरफ। हम लोगों ने भी भीष्म प्रतिज्ञा लिया है, लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा लेने के बाद भी हम कौन है? पांडव है या कौरव में है? ये नंबर फाइनल करेगा, ये नंबर फाइनल करेगा। द्रोणाचार्य जैसे लोग, गुरु द्रोणाचार्य गुरु थे, ज्ञानी थे, ज्ञानी होने के बावजूद भी कौरव के तरफ क्यों थे? क्योंकि उस ज्ञान को अप्लाई करना नहीं आया जीवन के अंदर। तो अब तीसरा फेज जो शुरू हुआ है युद्ध का, हर एक के जीवन में युद्ध चल रहा है, शुरू हो गया 2014 से। और जब 2014 से युद्ध शुरू हो गया तो गीता ज्ञान भगवान सारथी बन गया, साक्षी बन गया। हाँ, आज बाबा ने जैसे मुरली में कहा, जिसका बुद्धि योग क्लियर होगा उसको टचिंग जरूर हो जाएगी। अब टचिंग वाला समय शुरू हो गया, लेकिन जिसका बुद्धि योग क्लियर होगा उसी को, वो पांडव है और पांडव होने के कारण उसको टचिंग होगी, और टचिंग होने के साथ वो उसी प्रकार ज्ञान को अप्लाई करेंगे, है ना? ज्ञान को अप्लाई करने की बात है। गीता ज्ञान सुन लिया हमने इतना साल, और सुनने के बाद युद्ध के समय ही तो उसका एप्लीकेशन चाहिए, व्यवहारिक स्वरूप में, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन के अंदर, हर स्तर पर उसका एप्लीकेशन चाहिए। जो एप्लीकेशन करेगा वो पांडव है, उसके साथ भगवान है। लेकिन जिसने ज्ञान को यहां तक रखा है, लेकिन यहां तक रखा है उसको ला नहीं सके, क्यों? क्योंकि बीच में अहंकार आ गया है, अहंकार आ गया। ब्राह्मणों में भी जो मैंपन, ये सबसे बड़ा रोड़ा है हमारे पुरुषार्थ में। इस मैंपन को जीतने के लिए ही, क्योंकि उससे कई संस्कार हमारे किस तरफ हमें ले जाते हैं। मैंपन का संस्कार आया, मैं कर रहा हूं, मैंने किया। अरे बाबा ने हमेशा कहा कि आप में ये विशेषता है तो किसने दिया, ये स्मृति में रखो। बाबा करण करावनहार है, बाबा कराता है। ये स्मृति अगर क्लियर नहीं है और मैंपन आया तो हम कौन बन जाएंगे उस वक्त? पांडव बनेंगे या कौरों में चले जाएंगे, किस तरफ होंगे? अक्षौणी की सेना किसकी थी? शास्त्र में क्या दिखा है? अक्षौणी की सेना किसकी थी? श्री कृष्ण की थी ना, तभी तो उसने जब दुर्योधन और अर्जुन को दिखाया कि आशीर्वाद मांगने गए, तब पूछा कि कौन चाहिए, एक तरफ मैं हूं एक तरफ अक्षौणी की सेना है। तो दुर्योधन ने क्या कहा? अक्षौणी की सेना चाहिए। तो अक्षौणी की सेना किसकी थी? भगवान की थी ना। तो हम सभी किसकी सेना है? भगवान की तो है ना, लेकिन किस तरफ लड़ रहे? किस तरफ लड़ रहे? संस्कारों से हम किसकी सेना में है ये फाइनल हो जाएंगे। इसलिए समय के हिसाब से आवश्यकता है संस्कार परिवर्तन और स्व परिवर्तन करने की, क्योंकि अगर नहीं किया तो वही अक्षौणी की सेना जो भगवान की थी लेकिन दुर्योधन के तरफ चली गई थी। तो देखो, ये सबसे पहला चेक करना है संस्कारों में, मैंपन है। सूक्ष्म में भी मैंपन है। अगर मैंपन है तो अपने आप को देख लो कि मैं कौन हूं, किस सेना में खड़ा हूं, ये देखने का समय आ गया है। लेकिन आज की मुरली में एक और बहुत अच्छी बात बाबा ने सुनाई कि जब युद्ध आरंभ हो गया है तो युद्ध में विजयी होने के लिए एक युक्ति बताई बाबा ने। कौन सी युक्ति बताई? कौन सी युक्ति बताई बाबा ने? हाँ, विदेही अशरीरी हो जाओ। जब आप देखो कि बहुत ज्यादा युद्ध खड़ा है, समझो समस्याएं, परिस्थिति, एक साथ में सारे युद्ध के पेपर आ रहे हैं, एक साथ में युद्ध हो रहा है, परिस्थितियों से भी आ रहा है, समस्याओं से भी आ रहा है, अपने स्वभाव संस्कार का भी आ रहा है, और हाँ लोगों के साथ में भी हमारा टक्कर हो रहा है। ये सब फुल फोर्स में पेपर चालू हो गया, यानी युद्ध शुरू हो गया। अगर जब बहुत ज्यादा युद्ध की स्थिति महसूस हो जीवन के अंदर, क्योंकि अभी अंतिम फेज चलना शुरू हो गया है, अब वो युद्ध का इंतजार नहीं करो, ये युद्ध जो चालू हो गया है इसके बारे में जागृत हो जाए। हर ब्राह्मण जागृत हो जाए। और उसके लिए बाबा ने आज विधि बताई कि जब ऐसा समय आए, चारों ओर से खूब पेपर आक्रमण कर रहे हो, और संस्कारों में भी विशेष संस्कार कौन सा, एक तो मैंपन का और दूसरा संस्कार है मोह का। इसीलिए गीता ज्ञान है ही नष्ट मोह स्मृति लब्ध, क्योंकि जहां ये मैंपन और मेरापन ये दो आए, ये सबसे कड़े से कड़ा युद्ध शुरू करेगा जीवन के अंदर। ये दो संस्कार, बहुत कड़ा युद्ध आरंभ करना पड़ेगा आपको, उसके साथ में युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा विदेही अशरीरीपन, और एकदम साइलेंस में होकर के परमधाम चले जाओ या साक्षी हो जाओ, देखो किस तरह का युद्ध चल रहा है। आपको चारों ओर हर एक परिवार के अंदर हर एक युद्ध करता हुआ नजर आएगा, हर एक युद्ध करता हुआ नजर आएगा। उस समय साक्षी होकर के आप देखेंगे तो आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, और ये स्थिति ही आपको ऊपर उठा देंगी। जो कहा जाता है ना, कभी कभी युद्ध में जो इस तरह की शक्तियां रखते थे कि अपना रथ ऊपर उठा लेते थे और ऊपर से क्या करते थे, मनसा शक्ति के द्वारा उनके ऊपर तीर चलाते थे और विजयी होते थे। अगर ऊपर नहीं उठाया रथ को, यानी अपने मन के रथ को ऊपर नहीं उठाया, तो क्या होगा, नीचे रहेंगे तो क्या होगा, शिकार हो जाएंगे, बहुत जल्दी युद्ध के अंदर कहीं ना कहीं घायल हो जाएंगे, और घायल होंगे तो क्या होगा, अवस्था क्या रहेगी, पांडव वाली रहेगी, विजयी, पांडव माना विजयी, तो विजयी वाली अवस्था रहेगी या हार खाने वाली अवस्था रहेगी। इसीलिए दिखा कि भीष्म प्रतिज्ञा करने के बाद गीता का ज्ञान उसने भी सुना था। कहा जाता चार लोगों ने गीता का ज्ञान सुना था और विराट रूप का दर्शन किया था, एक अर्जुन था, एक वेदव्यास जी थे, एक संजय था और एक भीष्म पितामह थे। तो भीष्म पितामह ने भी गीता सुनी थी, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म अहंकार या मेरेपन का, कि अभी मुझे ये गद्दी की रक्षा करनी है, मैं इसका ये हूं, मैं संरक्षण हूं, ये मैंपन और मेरेपन ने ही उसको 18 दिन बाणों की शैया पर लेटाया। तो हमारे संस्कार ही हमारे लिए बाणों की शैया बन जाएगी, जहां पर हमें लेटना पड़ेगा, और वो एक एक संस्कार हमें इस तरह से चुभन का अनुभव कराएगा, इतना चुभेगा जो लगता है कि ये संस्कार को जीता क्यों नहीं, ज्ञान तो था मेरे पास। इसीलिए जानना मानना और प्रैक्टिकल आचरण में लाना, तो अब ये युद्ध के समय में हर ज्ञान की पॉइंट को प्रैक्टिकल आचरण में लाने की है, क्योंकि तभी युद्ध में विजयी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, नहीं हो सकेंगे। और वो शैया पर लेटना पड़ेगा हमें भी, और उस समय हमारे अपने ही एक एक कमजोरी वाले संस्कार हमारे लिए इतने नोकीले अनुभव होंगे, हमें इतने चुभेंगे और ऐसा महसूस कराएगा जैसे सचमुच वो भीष्म पितामह जो बाणों की शैया पर लेटा हुआ है, ये हमारा ही गायन है, ये हमारा ही गायन है, ये हमारा ही यादगार है, ऐसा महसूस कराएगा। इसलिए संस्कार परिवर्तन करने की आवश्यकता है, स्वपरिवर्तन। फास्ट गति है स्व परिवर्तन, क्योंकि अब युद्ध का समय शुरू हो गया और युद्ध का समय शुरू होने के बाद भी अगर स्व परिवर्तन नहीं किया, अपने पुराने संस्कार को पकड़ के रखा और टाइट कर दिया और वो संस्कारों के साथ दूसरों के संस्कारों के साथ युद्ध करना आरंभ कर दिया, तो हमारे लिए ही कठिनाई महसूस होगी। इसलिए स्व परिवर्तन ये फास्ट ट्रैक है संस्कार परिवर्तन के, कहीं ना कहीं अपने आप को परिवर्तन कर लो, समझ लो, विजयी होने का यही एक तरीका है। और तरीका जो बाबा इस साल सीजन में सुना रहा है, पिछले साल बाबा ने जो सीजन में तरीका सुनाया, 2014 से बाबा टिप्स दे रहे हैं सारथी बन करके बस। और पिछले साल बाबा ने टिप दिया व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, बहुत सुंदर हम सभी ने गीत सुना, मन बदलो, चिंतन बदलो, व्यर्थ से मुक्त होने की आवश्यकता है। क्योंकि संस्कार बनता कैसे है? संस्कार बनने के तीन आधार हैं। पहला आधार है संस्कार बनने का चिंतन। जितना कोई भी बात का चिंतन करते जाएंगे, बार बार, चाहे नकारात्मक चिंतन भी चलता रहेगा, हीनता की भावना का चिंतन चलता रहेगा, तो वो हमारा संस्कार बना देगा। क्योंकि खाली चिंतन नहीं करते हैं, चिंतन के साथ साथ उस भावना को भी इमर्ज करते हैं, और भावना के साथ साथ वो विजुअलाइजेशन होता है, मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी हूं। तो ये चिंतन जितना चलेगा वो संस्कार को दृढ़ करता जाता है। दूसरा संस्कार बनने का आधार है वर्णन। जितना वर्णन करते जाएंगे तो वर्णन करने से भी संस्कार मजबूत होते जाते हैं। बार बार कोई चीज व्यर्थ की बातों का वर्णन, पर चिंतन का वर्णन, किसी की कमजोरी का वर्णन, ये वर्णन हमारे अंदर पर चिंतन का संस्कार क्रिएट कर रहा है। तो जितना वर्णन करते जाएंगे उतना संस्कार और पक्का होता जाएगा। एक तो चिंतन से, दूसरा वर्णन से, और तीसरा कर्म से। कोई कर्म जानते नहीं करना चाहिए लेकिन हो जाता है। ये बार बार जब कर्म में आ गया तो ये कर्म हमारे संस्कार को और मजबूत करते हैं। तो ये तीन आधार है संस्कार बनने के, और इसीलिए बाबा ने कहा व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, क्योंकि यही आपको बांध रहे हैं। और ये जो बंधन हम क्रिएट कर रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा के लेवल पर, ये बंधन जितना हमारा बनता जा रहा है, ये बंधन ही हमें ऐसा बांध देगा जो कितना भी छूटने का प्रयत्न करो तो भी छूट नहीं पाएंगे। इसलिए पिछले सीजन में बाबा ने जो मुरलियां चलाई थी उसमें ये बात विशेष अटेंशन पर दी थी कि व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्यूरिटी ही है, इसलिए व्यर्थ से मुक्त हो जाओ। और इसीलिए उस समय भी बाबा ने हाथ खड़ा करवाया था कि व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि तभी आप एवर रेडी बनेंगे, यानी युद्ध में विजयी होने के लिए तैयार हो जाएंगे। अर्जुन को भी बहुत व्यर्थ चला, पूरा अध्याय व्यर्थ चला पहला अध्याय, लेकिन ज्ञान देने के बाद उसने कह दिया अब मैं व्यर्थ से मुक्त हो गया। और जैसे ही व्यर्थ से मुक्त हो गया तो हर उसमें विजयी होना आरंभ कर दिया, विजयी होने लगा वो, उसको फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि विनाश का साक्षात्कार भी हो गया उनको कि युद्ध होने वाले उसके पहले हमें अपने जीवन के युद्ध में विजयी होना है, व्यवहारिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर। और इस सीजन में बाबा एक और युक्ति बता रहा है। कौन सी युक्ति बता रहा है विजयी होने के लिए? कौन सी युक्ति बता रहा है जिसको लोग साधारण समझ लेते हैं बाबा के महावाक्य को भी? और वो युक्ति है वाह वाह के गीत गाओ। जब भी कोई सीन हो आपके सामने, कोई परिस्थिति हो, समस्या हो, कोई भी बात हो, तो क्या कह दो? वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह करेंगे तो क्या होगा, ऊपर उठ जाएंगे, है ना। वाह रे मेरा भाग्य वाह, ये देखो अपने आप को उस स्वरूप में, वाह वाह का गीत गाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, युद्ध में विजयी होना आसान हो जाएगा। कितनी सिंपल टिप्स दे रहे हैं बाबा मुरली के अंदर, मुरली के अंदर विजयी होने की फाइनल टिप्स है। उसके बाद ये भी बंद हो जाएगा, युद्ध के बीच बीच में सारथी बन करके वो हमें टिप्स दे रहा है। वाह वाह के गीत गाओ, वाह वाह मना खुशी में आ जाओ। उदासी, ये परिस्थिति को देख करके या समस्या को देख करके उदास निराश नहीं हो जाओ, वाह वाह के गीत गाओ, वाह मेरा भाग्य, ये खुशी में आ जाओ। वाह मेरे वाह, वाह रे मेरा बाबा वाह, वाह वाह के गीत गाओ। कितनी सुंदर विधि बाबा ने बताई विजयी होने के लिए, इतनी सिंपल विधि बता रहे हैं बाबा, फाइनल टिप्स दे रहे हैं। और फाइनल टिप्स देने के बाद भी जब ये युद्ध में पराजय हो जाएंगे तब महसूस होगा, अरे हम तो वो युद्ध देखने का प्रयत्न कर रहे थे कि वो युद्ध कब होने वाला है, कब होने वाला, ये युद्ध का तो पता ही नहीं चला कि हम अपने युद्ध में तो फेल हो गए। क्या हो रहा है, हर एक युद्ध में है कि नहीं है। तो इसीलिए अब आवश्यकता है कि हम अपने आप को, जो एवर रेडी वाला हाथ कड़ा किया था ये फोटो हमारा अपने सामने ले आए और सचमुच में एवर रेडी बन जाए, क्योंकि अब युद्ध शुरू हो गया है। और ये बाबा की फाइनल टिप्स जो हमें मिल रही है, बाबा ने 2014 में हर ग्रुप में हमें जो ड्रिल सिखाई, ये ड्रिल को याद करो और जब ज्यादा युद्ध हो जाए उस ड्रिल में चले जाओ, पांच स्वरूप की ड्रिल या साकारी आकारी निराकार निराकारी स्थिति की ड्रिल, ये ड्रिल करना शुरू करो। जितना ये ड्रिल करेंगे वो भी हमें विजयी बना देगा। ये चक्कर, पांच स्वरूप का चक्र यानी स्वदर्शन चक्र घुमाओ। ये स्वदर्शन चक्र घुमाना चालू करो तो माया के सारे धड़ कट जाएंगे, सारा सर कट जाएगा, आपको परेशान नहीं करेंगे। तो अपने ओरिजिनल संस्कार को इमर्ज करो। ये ओरिजिनल संस्कार ब्रह्मा बाबा ने इमर्ज किया तभी वो विजयी हो गए। राज बाबा ने यही कहा, ब्रह्माचारी बनना, मेरे कदम पर कदम रख करके चलो, सहज हो जाएगा। याद करो संस्कार परिवर्तन करने के लिए, ये खाली स्मृति के अंदर ले आओ कि अगर ब्रह्मा बाबा होते थे तो क्या करते थे, मेरी जगह पर अगर बाबा होते थे तो क्या करते थे। तो आप में वो टचिंग आएंगे कि बाबा अगर होते थे तो ये नहीं ये करते थे, तो साक्षी होकर चॉइस करना आसान हो जाएगा और सही चॉइस करेंगे और ब्रह्माचारी बन जाएंगे विजयी होने के लिए। इतना सहज बाबा टिप्स दे रहा, आज की मुरली में इतने टिप्स थे संस्कार परिवर्तन के। एक एक बात जब मैं सुन रही थी मुरली तो मुझे लगा आज बाबा ने पूरी संस्कार परिवर्तन के ऊपर ही तो बातें बताई है। ये स्व परिवर्तन तो करना है हमें और ये स्व परिवर्तन करके ही हम विजयी हो सकेंगे। या दूसरी बाबा ने बात सुनाई इस सीजन में, कौन सी बात सुनाई, कौन सी टिप दिया हमको। मुझे याद आता कि जब बाबा मुरली चला रहा था तो ब्राह्मण बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, सबका चेहरा खुशी से चमक रहा था। और कौन सी बात बाबा बता रहा था, साइंस के साधनों को भी शुक्रिया करो। साइंस के साधन आपके काम में आ रहे हैं, इसका शुक्रिया करो। लेकिन आज की मुरली में क्या कहा, यही साइंस के साधन अगर फेल हो गए तो हमारी अवस्था कैसी होगी ये चेक भी करो, कि उसके परवश तो नहीं है, उसकी अधीनता में तो नहीं है। क्योंकि आज साइंस के साधनों को इतना ब्राह्मण लोग यूज करने लगे, सारा दिन क्लास में भी अगर बैठे हैं ना तो व्हाट्सएप चलता रहता है ना, मैसेज भेजते रहते हैं। मैं कई बार देखती हूं, अरे 10 लोग एक दूसरे को रात को सोने से पहले गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट ही करते रहते हैं।
या हैप्पी अमृत वेले, मना अमृत वेले के समय व्हाट्सएप याद आ रहा है, बाबा याद आ रहा है, कौन याद आ रहा है? सोते समय बाबा याद आ रहा है, व्हाट्सएप याद आ रहा है, ये साधनों की अधीनता नहीं है। क्या है ये? अधीनता है या अधिकारीपन है? क्या कहेंगे? अधीनता है ये। और ये अधीनता अगर आज है तो हम ये अधीनता के कारण पास होंगे या फेल होंगे युद्ध में? स्पष्ट करो अपने आप से कि मेरी स्थिति क्या होगी अगर जिस दिन व्हाट्सएप नहीं चला तो क्या होगी? हाँ, अरे बाबा से गुड नाइट, कई लोग लिखते हैं बाबा को गुड नाइट लेकिन ग्रुप में भेजते रहते हैं, तो मैं यही सोचती हूं कि क्या है ये, है ना, कि क्या यही ब्राह्मण जीवन का मतलब था? व्हाट्सएप इसी के लिए था क्या? 10 बार गुड नाइट करते रहे एक एक व्यक्ति, अगर ग्रुप में 50 व्यक्ति है, 50 लोग गुड नाइट करते हैं तो 50 मैसेज किसके होंगे? किसके होंगे? गुड नाइट के ही होंगे। और हैप्पी अमृत वेला, बस वही वही हैप्पी अमृत वेला। अरे बाबा से अमृत वेला करो ना आप, मनी मन बाबा से कनेक्ट हो जाओ, ये शायद आपको आपकी स्थिति को भी मजबूत करेगा और आपको भी मजबूत करके आपको विजयी बनाएगा। ये व्हाट्सएप का गुड नाइट या गुड हैप्पी अमृत वेला करने से आप पांडव नहीं बन जाएंगे, विजयी नहीं हो सकेंगे, नहीं हो पाएंगे, इतना याद रखिएगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम ये साधनों की अधीनता, बाबा ने इसलिए कहा इसका शुक्रिया कर दो, शुक्रिया कर दो कि साइंस ने हमें समय पर अपनी स्थिति बनाने के लिए एक साधन दिया। चलो मुरली आती है, बहुत अच्छी बात है, मुरली आती है, मुरली पढ़ो आप, बहुत अच्छी बात है, मुरली आती है, सुनो मुरली उसमें, ये बहुत अच्छी बात है। मुरली का कई मंथन भी करते हैं, चलो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी जो एग्जाम है, ये युद्ध जो है वो पेपर एग्जाम नहीं है। जब मैं पेपर पढ़ती हूँ उसमें भी कि 20 मार्क का पेपर या 50 मार्क का पेपर आज की मुरली से कई लोग उत्तर देते हैं और उत्तर देने के बाद समझते हैं हम पास हो गए, बहुत अच्छे। पेपर एग्जाम नहीं है हमारी, हमारी एग्जाम कौन सी है? प्रैक्टिकल है। और मार्क्स किस में ज्यादा मिलेगा, पेपर एग्जाम में या प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल हमारी स्थिति क्या है ये देखने की बात है। इसलिए बाबा ने लास्ट मुरली में कहा साधनों को शुक्रिया कर दो और अधिकारी बन जाओ, अधीनता को स्वीकार नहीं करो उसकी। ये अधीनता बहुत कभी कभी आपको पश्चाताप के उसमें ले जाएंगी, पश्चाताप में ले जाएंगे। इसलिए शुक्रिया कर दो कि अब तक उसने हमें जो अच्छी बातें दिया बहुत अच्छी बात है, थैंक्स कर दो। लेकिन आज जैसे बाबा ने कहा अगर समय पर ये साधन काम नहीं करे तो हमारी स्थिति अपसेट नहीं होनी चाहिए उसके कारण, हमारी स्थिति उससे भी ऊपर होनी चाहिए, उससे भी ऊपर हो जाए तब हम विजयी आत्मा बन जाएंगे। ये आवश्यकता है पुरुषार्थ करने की, क्योंकि अभी युद्ध का समय शुरू हो गया है। वो युद्ध का इंतजार नहीं करो, वो युद्ध होगा तब तो आपको बिल्कुल फाइनल रिजल्ट मिलेगी, फाइनल रिजल्ट मिलेगी। लेकिन अब जो युद्ध से हम लोग गुजर रहे हैं, हर एक ब्राह्मण युद्ध के मैदान में, और युद्ध शुरू हो गया, गीता ज्ञान पूरा हो गया, अब टिप्स मिल रही है, फाइनल विजयी बनने की टिप्स मिल रही है। अगर इसका भी उपयोग नहीं किया तो ये भी बंद हो जाएगी और हम उस साधनों में ही लगे रहेंगे और प्रैक्टिकल जब एग्जाम आएंगे तो फेल ही हो जाएंगे और कौरवों की पार्टी में सिद्ध हो जाएंगे। तो अपने आप को कौरवों की पार्टी में सिद्ध नहीं करो। अब आवश्यकता है कि हम क्या बन जाए। हाँ, जो कहा युद्ध कितने प्रकार का है, किसी का मन का युद्ध चल रहा है, किसी का अपने स्वभाव का युद्ध चल रहा है, स्वभाव दूसरे के स्वभाव के साथ मैच नहीं हो रहा है, संस्कारों का युद्ध चल रहा है, साथ ही साथ प्रकृति का युद्ध चल रहा है। प्रकृति कौन सी? इंटरनल प्रकृति, एक्सटर्नल प्रकृति। इंटरनल प्रकृति कौन सी है? सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये देखना है मैं सात्विक स्तर पे हूं, राजसिक स्तर पे हूं या तामसिक स्तर पे हूं, ये देखना है। ये प्रकृति अगर मुझे तामसिक दिखाई देती है तो मुझे सात्विक स्थिति तक उसको पहुंचाना है, क्योंकि तभी हम श्री कृष्ण के साथ रास लीला कर सकेंगे, संस्कारों का रास। बाबा के हाथ में हाथ देना माना श्रीमत रूपी हाथ मैंने अच्छी तरह से पकड़ के रखा है या नहीं है, तभी हम बाबा को अपना सारथी बना देंगे। अगर श्रीमत का हाथ नहीं पकड़ा है तो बाबा हमारा सारथी नहीं बनेगा युद्ध के मैदान के अंदर। तो इसीलिए परिस्थितियों के साथ युद्ध चल रही है, हालातों के साथ, ब्राह्मणों के भी हालात देखो, हालातों के साथ युद्ध चल रही है, समस्याओं के साथ युद्ध चल रही है, कितने रूप से हमारा युद्ध चल रहा है सोचने की बात है। तो युद्ध के मैदान में हर एक खड़ा हो गया है और अब बाबा का श्रीमत का हाथ पकड़ के उसको सारथी बना लो तो विजयी होना आसान होगा। कौरव के तरफ जाएंगे नहीं, नहीं तो भगवान की ही सेना, वो अक्षौणी की सेना थी, उसमें चले जाएंगे आप, लड़ेंगे कौरव के तरफ से, और कौरव के तरफ से लड़ने वाला विजयी होगा या हार होगी? हार होगी। तो इसीलिए देखो अपने आप को, और इसीलिए संस्कार परिवर्तन की फास्ट गति है स्व परिवर्तन। जहां मुझे परिवर्तन करना है अपने आप को परिवर्तन करना चालू करो। दूसरा बदले तो मैं बदलू, नहीं, ये फंडा यूज नहीं करो, अभी मुझे बदलना है, ये युद्ध में मुझे विजयी होना है तो मुझे परिवर्तन होना है। समस्याएं आई, फलाना ऐसे किया इसलिए आई, अब किसी पर ब्लेम डालना छोड़ दो, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, ये छोड़ दो, मुझे क्या करना है ये देखना है कि मुझे क्या करना है और मुझे कौन कह रहा है करने के लिए। तो इसीलिए ये जब स्थिति आ जाएगी कि बाबा का श्रीमत का हाथ मैंने अच्छी तरह से पकड़ा हुआ है, अपनी बुद्धि के हाथ में हाथ दिया हुआ है, तो हर पेपर जो सामने आएगा जीवन के अंदर उसमें विजयी होना आसान है। नहीं तो क्या होगा, ये पेपर एग्जाम नहीं है, अभी इतना याद रखिए, पेपर एग्जाम नहीं है। और इसीलिए ज्ञान यहां भरपूर है, लेकिन अगर वो ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाए नहीं, अगर उस ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं हुआ वो समस्या परिस्थिति के समय, तो हमारी हार भी निश्चित है ही है। उसके बाद वो युद्ध होने वाला है। उसके बाद अर्जुन ने युद्ध करना क्यों स्वीकार कर लिया था लास्ट में, जब उसने विराट रूप देखा और विराट रूप के बाद कहा कि ये भयंकर स्वरूप कौन सा है, तो कहा महाकाल का स्वरूप है, और महाकाल का स्वरूप है, महाकाल किसी भी तरह से विनाश तो करने वाला ही है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम निमित्त बनना चाहते हो या नहीं चाहते। तब जब अर्जुन ने समझ लिया, जब महाकाल खड़ा है और सारा सृष्टि का महाविनाश होना ही है तो क्यों नहीं मैं भी युद्ध करके अपने युद्ध में तो विजयी हो जाऊं, क्योंकि नहीं तो महाकाल का विनाश सबको समाप्त करेगा। इसलिए बाबा ने आज भी मुरली में कहा, प्रकृति को आपने ऑर्डर दे दिया है, वो बड़ा बड़ा झाड़ू लेकर के सफाई का काम करेंगे, लेकिन उसका इंतजार नहीं करो। अगर हमारे युद्ध में हम भी हार गए तो प्रकृति का झाड़ू हमें भी साफ कर देगा, प्रकृति का झाड़ू लंबा लंबा वो हमें भी साफ कर देगा, ये हार गए उसको झाड़ू मार दो अभी। इसलिए ये इंतजार में न रहे कि प्रकृति का झाड़ू फेरने का समय आए तब हम अपने आप को परिवर्तन करें, नहीं, ये युद्ध में हमें अपने आप को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। विजयी बनेंगे तो प्रकृति का झाड़ू हमें नहीं लगेगा, हम विजयी हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे और सहजता से ऊपर बाबा के पास चले जाएंगे। तो ये है संस्कार परिवर्तन की फास्ट गति स्व परिवर्तन। युद्ध का समय है, ये याद रहे, ठीक है। ओम शांति। Thank you.
सारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। इमारत बनी है ख्याल जैसा भी तुमने किया है। जिंदगी की इमारत बनी है ख्याल जैसा भी तुमने किया है। बीज बोया है जैसा भी मन में, फल उसी का तो तुमने शुचिता के संकल्प लाओ, दर सुखों का वो खुल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो।